अल्लाह ताला की रबूबियत की एक और निशानी, और वो क्या, आयत नंबर 5, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैयन फिल अर्द, बेशक अल्लाह के उस पर कोई चीज छुपी हुई नहीं है, जमीन की वला फिस समाई, और ना आसमानों की। ये किसको कहा जा रहा है? नसरानियों को, कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हो, तो बताओ क्या हजरत ईसा के अंदर भी ये खूबियां मौजूद हैं कि उनके ऊपर आसमानों जमीन की चीजें ना छुपी हो, उनके ऊपर सब कुछ हो? कुछ भी नहीं पता। तुम कैसे दावे करते हो उनके बारे में कि वो खुदा थे या खुदाई में शरीक थे? उनके पास तो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी। गोया कि अल्लाह को इलाह मानने के दलाइल, बिल्कुल जैसे आयतुल कुर्सी में हमने अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में दलाइल पढ़े थे, गोया के बता दिया कि इलाह वो होता है जो लोगों की हिदायत का भी इंतजाम करे। तौरात, इंजील और कुरान के नजूल में तस्करा हो गया। और दूसरी बात यहाँ बता दी कि इलाह वो होता है कि जो लोगों के दिलों के हाल भी जानता हो, उनके अंदर क्या है, उनके बाहर क्या है। अब आयत नंबर 6 में एक और दलील, और दलाइल के साथ 1 2 3 लगाते जाएं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अल्लाह की सिफात कितनी है। कल आपसे असाइनमेंट में पूछा जाएगा कि इब्तदाई आयतों में अल्लाह की तौहीद के क्या दलाइल हैं, तो ये सारे दलाइल हैं। अगली दलील, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, वही है जो तुम्हारी सूरतें बनाता है माओं के रहमों में जिस तरह चाहे। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब है और हिकमत वाला है। देखिए, पिछली चीज अल्लाह के इल्म से मुतल्लिक थी ना, कि उसको इल्म है सबके दिलों का। यहाँ अल्लाह की कुदरत की बात है, और यहाँ माओं के पेट में बच्चे की सूरत बनाना इशारा है ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तरफ। तुम ईसा को खुदा कहते हो, खुदा का बेटा कहते हो, तो ईसा तो एक वक्त में माँ के पेट में था, इतना बेबस। माँ के साथ उसकी हरकत थी, माँ के पेट के अंदर उसकी सारी मूवमेंट थी, तो बताओ कि क्या वो हो सकता है खुदा? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तुम इस तरह की चीज़ों को जहन में लाकर अपने अकीदे को ख़राब ना करो। अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसा कोई मामला नहीं किया कि खुदा को पहले माँ के पेट में रखा जाए फिर वहाँ से उसको निकाला जाए। तो लिहाजा मान जाओ कि ईसा खुदा नहीं थे। ये तो बात होगी टेक्स्ट के एतबार से, लेकिन अगर हम इस आयत को अल्लाह ताला के नाते से देखें तो आप देखिए कि युसव्विरुकुम, युसव्विरु का लफ्ज़ क्या है? पहले तो मुझे आप ही बताइए कि क्या पीछे कहीं आपके सबक में गुजरा? फसरहुन्ना, जी वहाँ आपको बताया था कि तस्वीर लफ्ज़ जो है ना, वो भी वही है जो सूर है। स्वात वाव रा इसका रूट होता है, सूर। सूर कहते हैं माइल करने को, सूरत जो होती है ना हमारी, ये माइल करती है, माइल से समझते हैं ट्रैक करती है। किसी को भी आप देखें ना, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होती है? उसके चेहरे में होती है। तो तस्वीर सूरत क्या है कि जो बंदे को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ इंसान को अट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, फिल अरहाम, अरहाम रहम की जमा, माँ का वूम, मदर वूम, वो जगह जहाँ पे बच्चा पलता है, बच्चे को वजूद दिया जाता है, फिर उसके बाद उस बच्चे को बड़ा किया जाता है। पहली बात तो याद रखिए कि मेरी और आपकी सूरत अल्लाह का फैसला है, कभी अपनी सूरतों को बुरा ना कहें। आज तो पसंद ही नहीं आती हमें, हर वक्त चेंजेस चाहते हैं इसमें, कभी शार्प फीचर्स और कभी जैपनीज फीचर और कभी स्मोकी आइज और कभी फलानी आइज। अल्लाह बना देता ना इस तरह की काली आंखें, जिन्नों वाली, चुड़ैलों वाली, तो मुंह छुपाते फिरते। कोई बंदा मेकअप भी करे कराए तो कोई ढंग का तो करे, खौफ आ जाए बंदा एकदम देखे तो डर जाए कि ये कहाँ से उठ के आ गया। लेकिन सिर्फ ट्रेंड्स है, यकीन करें, स्क्रीनों पे चमकते हुए चेहरों को देखते हैं लग जाते हैं। चलिए, एक नेचर के साथ रहते हुए आप कोई काम करते हैं, नेचुरल है ना, आपके होंठ पिंक होते हैं, पिंक नहीं तो सुर्ख, सुर्ख नहीं तो थोड़ा सा उसको सुर्ख पिंक के इर्द गिर्द कोई भी शेड कर ले, तो आप नीली लिपस्टिक लगा लें तो फिर आप चुड़ैल ही लगेंगे ना। आज देखिए ट्रेंड्स कैसे चेंज हो गए, बाल काले हैं, काले नहीं तो भूरे होते हैं, चलते तो शुरू से देखते आ रहे हैं हम, भूरे भी हैं सारे। अब आप सब्ज बाल और आप वो मतंजन के रंगों के बाल बना लें तो लोग तो डरेंगे ही ना, लेकिन सब कह रहे हैं तो हम करेंगे। वो सर के ऊपर टमाटर लगा लेंगे हम, लगा लेंगे वो मटर लगा लेंगे हम, और लगाते हैं, कहें तो मैं आपको तस्वीरें भेज दूँ, देखना चाहते हैं नया ट्रेंड है, बंदा देख के घबरा जाता है कि इसमें असल चीज किधर छुपी हुई है। सैलड की प्लेट बना के चेहरा बना के दिखा देते हैं। देखिए कभी भी अपना मजाक ना बनवाएं, सजें सवरें बने। हर वो चीज जो आपको लगे ना कि ये चीज मुझे नेचर से हटा रही है, बस आपके नाखून है ना, सादे नाखून तो ऐसे ही होते हैं ना जैसे हमारे सबके, इस पे थोड़ा सा पिंकिश टच आ गया, मैरूनिश आ गया, सुर्ख आ गया, नेचुरल की शेड्स है ना, यानी आपकी असल स्किन से नेचुरल है। तब तो अगर आप इसमें काली नेल पॉलिश लगा लेते हैं, सब पीली नीली अजीब लगती है। अब आप ये कोई ये ना कहे कि मैं कोई फतवा दे रही हूँ, कि मैं कोई कल्चर की बात कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंसान की तबीयत के अंदर अगर वाकई उसकी आंखों में ब्यूटी हो ना, तो वो ब्यूटी के नाम पे भी भूत नहीं बन जाता, नेचुरल। बात लोग तस्वीरें खिंचाने के लिए असल में भूत बन जाते हैं। वो एक लड़की थी तो उसकी शादी थी, तो वो कहती है कि किसी ने बताई ये बात, कहती कि इतना ड्रोना मेकअप था दुल्हन का, तो उसे कहा कि ये क्या किया, कहती नहीं ये फिर इसमें तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आएंगी, तो उसने कहा जो उसका मियाँ बेहोश हो जाएगा शादी की रात, उसका क्या बनेगा। असल मियाँ को भी बेचारे को हम कह रहे होते हैं कि बस थोड़ी देर सब्र कर लो, बस ये तस्वीरें खत्म हो जाए फिर जाके मुंह धो लेंगे। कोई सोचने की हद है ना, इंसान अपने ऊपर थोड़ी सी तो तवज्जो करे। फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ जो बहुत ही मुझे खूबसूरत नुक्ता लगता है ना, वो क्या लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारी सूरतें बनाई। कैसी सूरतें बनाई, दुनिया में भी लोग बहुत सारे तस्वीरें बनाते हैं ना, गुमान भी करते हैं, दावे भी करते हैं कि हम तस्वीरें बनाते हैं, मना है। पहली बात जो है, तस्वीरें बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है जिसमें तस्वीरें आए, क्योंकि वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। कैसी सूरतें बनाता है अल्लाह, आइए जरा थोड़ी सी अल्लाह की कारीगरी कैसी है ये देखिए। टिंके पिंके हैं, एक एक तस्वीर पे हाथ रख के देखें जरा, इस बेबी को देखें, कोई बना सकता है ये आंखें, ये मुस्कुराहट, ये देखिए हैं, एक एक तस्वीर बोल बोल के बता रही है ना कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। ये देखो इसकी आंखों में कितनी होशियारी है, ये थोड़ी भी हाथ रख के लग रहा है ना कि सोच रहा कुछ। ये देखिए कोई है ऐसी तस्वीर बना सकता है, हम क्यों नहीं रब को पहचानते। मैं कहती हूँ हम अगर खुले आसमानों के नीचे जाके अल्लाह के बारे में गौर नहीं करते तो अपनी गोदों के बच्चों को ही देख लें। ये देखो स्माइली फेस, ये देखो इसकी चुचू। कभी गौर से अगर देखे बंदा, तो सिर्फ एक बच्चे के वजूद में आपको अल्लाह सुब्हान तआला का फन और उसका हुनर आपको दिखेगा। एक एक तस्वीर बता रही है कि मुझे मेरे रब ने बनाया है, मेरे खालिक ने बनाया है, और इनके ऊपर गौर करते जाएं और अपने रब से प्यार करें। सारी दुनिया के लोग जमा हो जाए ना, तो एक ऐसी तस्वीर नहीं बन सकती। अमूमन लोग तस्वीरें बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, रंग चाहिए, कैनवस चाहिए, कोई मॉडल चाहिए, जो लोग भी बनाते हैं। और ये कहाँ बनती है, माँ के पेट के 3 अंधेरों के अंदर। अल्लाह अकबर, सोचने की बात है। हमारी तो पलक एक छोटी हो जाए, एक बड़ी हो जाए, एक ये हो जाए, और वो बच्चे आप देखिए कि दुनिया की तस्वीरें बन गई तो चुप, और ये तस्वीरें फीलिंग्स देती हैं। कैसे फीलिंग्स देती हैं, जब इनका रोने को दिल चाहेगा तो रोएंगे, ये देख लें अब रोते बच्चे भी जरा ठुस्से हैं। वो एक बड़ी प्यारी तस्वीर है मेरे फोन में है, मुझे अभी निकालूंगी तो जरा सी ट्रबल होगी। तो उसमें एक बच्चा है मोटू सा, और वो ऐसे आंखें चुन्नी करते ऐसे लग रहा है सोच रहा है, तो ऐसे लग रहा है सोच, तो ऊपर लिखा हुआ है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि रात 3 बजे मैं रोना शुरू कर दूंगा बगैर किसी रीजन के। अब ये देखिए ये कौन इनको रुलाता है। दुनिया का कोई बंदा, कोई आर्टिस्ट अपनी तस्वीर को इस तरह रुला सकता है, आंसू ऐसे लगता है इनकी दुनिया को ले गए, एक लॉलीपॉप इनसे लेके तो देखे, ऐसे लगेगा किसी ने इनकी सारी जायदाद ले ली। वो कहते हैं ना रोंदे पांडे, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, ये रहमों में बनता है। माँ को भी नहीं पता होता कि मेरे पेट में क्या बन रहा है। अब हंसता बच्चा भी देखना कि रोते ही देखने हैं, क्योंकि रोता बच्चा माँ का तो हंसते बच्चे सबके हैं। चले आए आपको एक हंसता हुआ बच्चा, एक नहीं 10 हंसते हुए बच्चे दिखाती हूँ। ये म्यूजिक था, तब आप देख लें कि ये कौन हंसा रहा है इनको, ना कोई हंसा सकता है? अल्लाह के सिवा कोई ज़ात नहीं है जो इनको हंसा सके। कभी कम ही गौर करते हैं ना अल्लाह ताला के बारे में। यकीन करें कि बच्चे के ना हंसने की वजह होती है ना रोने की होती है, जैसे हम औरतों के ना खुश होने की वजह होती है ना दुखी होने की। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? फिल अरहाम, माँ के रहम में होता है। ये देखिए बच्चा माँ के रहम में कैसे होता है, माँ को खुद नहीं पता है। एक छोटी सी कब्र ही लगती है मुझे तो माँ का पेट। कितने मासूम, कितने भोले भाले होते हैं ये बच्चे। ये देखिए माँ के पेट के ऊपर बच्चे का पाँव। ये सब विरकुम फिल अरहाम, माँ के रहमों में क्या कुछ अंदर खजाने हैं। रोता बात है दुनिया में, और आप देखिए कि फिर दुनिया में आके कैसा हो जाता है। इतना बेबस होता है इंसान दुनिया में आते हुए, और बाद में उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये देखिए ये झिल्ली के अंदर है अभी बच्चा, और इसकी झिल्ली उतर चुकी है। सोचे जरा इसी शक्ल में बच्चा दुनिया में आ जाए तो कैसा लगे। हम बहुत थोड़ा अपने रब के ऊपर गौर करते हैं, कैसी मासूमियत। और बच्चे के जिस्म पे, जो बच्चे की चेहरे पे, ये देखिए ये जो मुस्कान है, ये जिसकी बुलबुली है, कोई बना सकता है दुनिया में? कितना नरम, कितना भोला, मासूम। हो अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। और आप देखिए कि ह्यूमन हेड का साइज जब बच्चा पैदा होता है तो ये होता है। बहुत सोचा कर इन चीज़ों को देख के। हम देखते तो बहुत हैं ये चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ही हमारे इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन अब इसके बाद आपने इसको किस एंगल से देखना है? गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुबहान तआला। ये अल्लाह की ज़ात है जो हमारे लिए ये सारी चीज़ें भेजती है, और हम इसके ऊपर गौर कम करते हैं। मुतासिर होते हैं ना, फिर उसकी बंदे को बात मानने को भी दिल करता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब, वही है जिसने आप पर ये किताब नाजिल फरमाई। देखिए पहले भी बात किताब की थी, आगे भी बात किताब की है, बीच में इंसान को उसकी औकात बता दी कि तुम तो अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हो सकते, मेरी बात क्या करते हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हें पैदा करके भूल गया हूं? तुम्हारी जरूरियात पूरी नहीं करता, सब कुछ करता हूं। क्योंकि इंसान को जिस तरह माँ के दूध की जरूरत होती है, खाने पीने की जरूरत होती है, बच्चे को इस तरह उसको हिदायत की भी जरूरत होती है। इसीलिए फरमाया कि मैं अब तुम्हारी रूहानी गजा के लिए अनजला अलैकल किताब। अब फर्क देखिए, कहीं नजला कहीं अनजला, मैं नाजिल करता हूँ। एक खूबसूरत जिसका कहें डिवाइन म्यूजिक है इन आयात में। अब आयत तो उतरी, कुरान तो उतरा, किताब तो उतरी। आयतें दो किस्म की हैं, मिन हो आयातुम मोहकमातुन, उसमें हुक्म वाली आयतें भी हैं। मोहकमात का आसान सा तर्जमा मोहकम आयात, हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल है, और वह उखरु मुतशाबिहात, कुछ दूसरी आयतें ऐसी हैं तो जो मुतशाबे हैं। इनका हाल क्या है? यानी कुछ आयतें तो बिल्कुल सिंपल है, समझ आ जाती हैं, क्लियर कट उनकी बातें हमारे जहन में आ जाती हैं। कुछ जरा पढ़े तो ऐसे लगता है कि उसका मानी कुछ वाजे नहीं है, कुछ डबल मीनिंग्स दे रहे हैं। जिस तरह आयतें दो किस्म की हैं, इस तरह इंसान भी दो किस्म के हैं। कौन से? अब उनका तस्करा है, फअमल्लज़ी नफी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बस वो लोग जिनके दिलों में टेढ़पन होता है, टेढ़े दिल वाले, खोटे दिल वाले, जो अल्लाह को बेबस करना चाहते हैं, दीनदारों को बेबस करना चाहते हैं, उनका हाल क्या? फयत्तबेउन मा तशाबह मिन्हु, वो तो उनके पीछे लग जाते हैं जिनमें शुबा होता है, मुतशाबे आयात के पीछे लग जाते हैं। वजह इब्तिगाल फितनती, फितने की तलाश में चाहते हैं ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें कराएं कि जिसके बाद लोग बेबस हो जाएं, और मौलवी तो बोल ही ना सकें बेचारे हमारे सामने। फितने चाहते हैं, ऐसी ड्यूल मीनिंग आयतें ले आते हैं, इस्लाम का झोल लोगों को दिखाते हैं, वब्तिगा तावील ही, और इनकी हकीकत और माहियत को मालूम करना चाहते हैं। हालांकि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि इनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ कौमा लगा लीजिए। एक किस्म का गिरोह, कठोर दिल, खोटे दिल वाले, जो मुबहम आयतों पे बात करते हैं। ये मजमून पूरा होगा तो मैं दोनों चीज़ों का फ़र्क आपको अपने लफ्ज़ों में बताऊंगी। एक दूसरा गिरोह जिसमें अल्लाह मुझे और आपको शामिल कर दे, वर्रासिखून फिल इल्म, और जो लोग इल्म में रासिख हैं, रसखा क्या होता है? मजबूती। और तुम्हें अपने बात सुनी, असरो रसूख, ये वही लफ्ज है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, फर्म नॉलेज, जिन्होंने इल्म की असल पाली। यकुलूना मन्ना भी, वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, और कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, ये सब कुछ हमारे रब की तरफ से है। यानी मोहकम आयतें, क्लियर हुक्म वाली आयतें, ये भी अल्लाह ने नाजिल की, और वो आयतें जिसका हमें समझ नहीं आता, जो आखरत से रेलेवेंट है, जो इस तरह की है, जो जरा क्लियर नहीं हमारे लिए, वो भी अल्लाह ने उतार दी। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब, और नसीहत हासिल कर ही नहीं सकते मगर वही जो होशमंद हैं। अक्लमंदों को ही ये बातें समझ आती हैं, बेवकूफों को ये समझ नहीं आती। ये आयत थोड़ी सी मुश्किल आयत है, आप इसको आसान से लफ्जों में लिखिए, मैं आपको बोलती हूँ चंद बातें, आप लिखते जाए, इंशाल्लाह फिर वाजे हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला ने दो दुनियाएं बनाई हैं, एक ये दुनिया जिसमें आज मैं और आप है, और एक आखिरत की दुनिया जिसमें मैंने और आपने जाना है। ये बात बात है, ठीक है। हम इस दुनिया में रहते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जीने के, रहने के कुछ हुक्म दिए। या अय्युल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, आतुज़्ज़का, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तल्लाक, इद्दत, ये वो, यानी वो चीज़ें जिनका हमारी इस दुनिया से ताल्लुक था, बड़ी क्लियर कट अल्लाह ताला ने बता दी। किस तरह बता दी? कि ये कर लो, ये ना करो। हमारे लिए सबसे अहम आयतें आजकल कौन सी हैं? वो जिन पे हमें आज अमल करना, ठीक है, ऐसी आयतें जिसमें इंसान को बिल्कुल क्लीन क्लियर हुक्म दिए जाएं, डू इट डोंट डू, कर लो ना करो, ये है वो है, इनको कहते हैं मुहकमात, हुक्म वाली आयतें। लफ्ज़ हुक्म से भी समझ आ रहा है ना, ठीक है, जिस पे आप अमल कर सकते हैं। और असल कुरान का मुद्दा यही आयतें हैं, ठीक है। अब आगे चलें, इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और जहान भी बनाया जो आज हमसे छुपा हुआ है, जिसके अंदर जन्नत है, जहन्नम है। क्यामत अभी आई कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके आने के तरीके बातें बताई है ना। अल्लाह ताला कैसा है, उसका वजूद नहीं पता ना हमें आज, वो कैसा है, मौत कैसे आएगी, फरिश्ते, यानी वो चीजें जिनका हमारी आखिरत से ताल्लुक है, आज हमें नहीं समझ आएंगी ना, लेकिन जाहिर है कि कुरान दुनिया और आखिरत की हर बात के लिए तो जरूरत थी ना कि वो भी कुरान में हो। उसके ऊपर जरूरत कब पड़ेगी? जब हम आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी आयतें जिसका इस दुनिया से हटकर गैब से ताल्लुक है या आने वाले वक्त से ताल्लुक है, उनको कौन सी आयात कहते हैं? मुतशबिहात। शुबा लग जाता है, अल्लाह कहाँ है, कैसा है, अल्लाह ताला क्यामत के दिन कैसे आएगा, वो है दिस एंड दैट। हमारा उसके लिए क्या कहना लाजिम है? कुल्लु मिन इंदी रब्बीना, बस पढ़ के आगे चलें। इसको इस तरह समझिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप पाकिस्तान के किसी गांव में रहते थे, आपकी वोकेबलरी बस वही गायें भैंसें और ज़मीनें और जो कुछ भी उर्दू पंजाबी थी वो थी। इतने में कोई असबाब ऐसे बनने शुरू हो गए कि आपको अमेरिका जाना पड़ा, जो जाना है आपको जाना है, जहाँ इंग्लिश बोली जाएगी, जहाँ के रूल्स रेगुलेशन फ़र्क होंगे। तो अब गांव के एक इंसान को जिसने फ्यूचर में कभी अमेरिका जाना है या यूरोप आना है, अगर उसको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कोई बात आती है, तो उसका क्या कहते कहते बस इसको रख लो अपने पास, जब वहाँ जाओगे ना तो एयरपोर्ट पे दिखाएंगे तो ये दिखा देना, पूछेंगे तो ये बता देना, बात वजह है। अब पाकिस्तान के गांव में रहता हुआ वो अमेरिकन लॉ और उसकी सारी इच्छी बिच्छी को समझने पढ़ने की कोशिश करे, फायदा होगा ना? वो वहां लगता है ना वो नहीं, हालांकि ये दोनों एक ही दुनिया के हिस्से हैं। बिल्कुल इसी तरह कुरान से जो हमारे लिए मतलूब रवैया है वो क्या है? कि हम अपने अमल की बातों पे गौर करें, और रह गई वो बातें जिसमें शुबे हैं, जिसको हम नहीं समझ सकते, उसको छोड़ दें। कौन सी चीज़ें हुक्म में आती हैं, कौन सी शुबे में आती हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। हुक्म वाली तो मैंने आपको आसान सी बता दी, जिसमें हमारे दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, मसलन जिसमें किस्से हैं, किस्से कहानियाँ हो चुके, कभी बदले नहीं जाएंगे। आदम का किस्सा और फलां दूसरे सब चले गए, ठीक है, जो गुजर चुकी है, माजी के किस्से, इंसान की तख्लीक का तस्करा जिसमें था हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह दुनिया में हलाल हराम इबादात मामलात निकाह तलाक ये सब मुहकम आता है, अकीदा मुहकम है, कभी नहीं छुपा हुआ होगा कि पता ही नहीं चला अल्लाह क्या चाहता था। मुतशबिहात में क्या क्या आता है? सबसे पहले हरूफ मुकत्तात, जो भी सूरत से पहले हमने पढ़े हैं, अलिफ लाम मीम, मुझे नहीं पता इसका मतलब, आपको नहीं पता होगा भी कोई, तो अल्लाह ने हमें नहीं बताया, ठीक है। तो मुतशबिहात में पहली चीज हरूफ मुकत्तात आ गए, दूसरी चीज अल्लाह ताला की सिफात, उसका वजूद, अल्लाह का अपना मामला, वो कैसा है, कैसे रहता है, किस तरह से, ये वो, इन पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। मना है कि अल्लाह के बारे में इससे ज्यादा गौर व फिक्र ना करो कि तुम किसी और सोच की तरफ चल पड़ो, ठीक है। मुतजिला एक नाम का एक फिरका गुजरा है, आपको पता है कि वो मुतशबेहात के पीछे पड़े और दीन से निकल गए। कुछ ने अल्लाह के अर्श पे होने को रिजेक्ट कर दिया, किसी ने अल्लाह की सिफात का इनकार कर दिया, और इस तरह जो बातें अपने अमल की नहीं थी उनको छोड़ा और पीछे चल पड़े। आप इसको ऐसे समझे कि क्या एक बच्चे को माँ बाप की हर बात समझ आती है? नहीं आती ना। क्या कहते हैं, बेटा बस इतना ही काफी है, बड़े हो गए तो समझ आएगी, और हम छोटे बच्चों के साथ बड़ों वाली बातें करते भी नहीं है। तो जब माँ बाप की हर बात नहीं समझ आती तो मानते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल की बात ना भी समझ आए तो क्या कहना है? समय ना वादाना, सुन के मान लीजिए। जिसकी नियत होगी ना मानने की वो तो मान जाएगा फौरन, और जिसकी नियत मानने की नहीं होगी ना वो पीछे हो जाएगा। वो इसी को बुनियाद बना के कहेगा, इसीलिए मैं कुरान नहीं पढ़ता क्योंकि इसमें कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। हमारा अमल क्या है कि मुहकमात पे पीछे में रजू करें, असलाफ सहाबा और कुरान और हदीस, ये तीन चार लफ्ज है। जब भी कुरान की कोई आयत ऐसी आए जिसमें अहकाम हैं, सूद हराम है कि नहीं, किसको पूछेंगे? पीछे वालों को पूछें, सहाबा सूद के बारे में क्या कहते थे, अल्लाह के नबी की क्या हदीसें हैं, ताबईन तबा ताबईन, दैट्स इट। यानी एक बुनियादी असूल लिख लें कि मुहकमात हुक्म दीन के मसाइल में हमेशा माजी में जाइए और मुतशबिहात में आगे जाइए। बहुत सारी कुरान की ऐसी आयतें हैं जो कल के दौर में शुबा डालती थी, आज साइंस की रोशनी में क्लियर हो गई। बिग बैंग थ्योरी, आप सूरह रात की आखिरी आयतों में पढ़ेंगे कि हम ज़मीन को उसके किनारों से सुकेड़ते आ रहे हैं, ज़मीन का रेडियस कम हो रहा है, आज साइंस ने बता दिया कैसे ही हो रहा है, ज़मीन के कोर के ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है, ये ठंडी हो रही है और सुकड़ रही है और ज़मीन पे पानी भर रहा है। तो मुतशाबे आयतें वक्त के साथ जो नॉलेज डिस्कवर हो रहे हैं, ये जो अब शुरू हो गए खैर से कंप्यूटर की ज़ुबान में कि कुरान में इतने लफ्ज़ हैं, इतनी दफ़ा पानी है, इतनी दफ़ा जन्नत है जहन्नम है, सुनते रहते हैं ना ये बातें, तो वक्त के साथ साथ मुतशाबेहात खुलती जाएंगी। सूरत नहल की एक आयत है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सवारियां पैदा की, खच्चर किए गाय के, और साथ ही लिख दिया वो भी कर दिया जिनको तुम नहीं जानते। अब कल सहाबा कराम से कोई पूछता सवारी क्या है तो कहेंगे घोड़ा गधा ऊंट, ये तीन चार ही थी ना। आने वाले दौर ने कहा नहीं 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 इसमें साइकिल भी है गाड़ी भी है, और आने वाले दौर में इसमें जहाज और पता नहीं क्या कुछ होगा। तो कुछ चीजें खुलती जा रही हैं, हमें उसके बाद पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बस ईमान लाइए और अपने आप को उलझाइए नहीं। आज जितने बिगड़े हुए फिरके हैं ना, ये भी समझ लें, आज मुसलमान होते हुए भी कुछ फिरके जो बिगड़े वो अल्लाह की ज़ात के बारे में बिगड़े और कुछ नबी सल्लम की सिफात के बारे में बिगड़े, उसकी वजह मुतशबिहात में था। अपनी अकल को छोटा समझें और बस अल्लाह से कहें कि जो बातें अल्लाह आपकी नज़र में ठीक हैं वो कर दें। अब सवाल पैदा होता है कि क्या फिर हम कुरान की आयतें ना समझें? ना समझ आए तो कहें नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं। तो आप इमाम इब्ने तैमिया की एक दुआ अपने लिए नोट कर लें, बड़ी खूबसूरत दुआ है। कहते हैं कि जब भी कभी उनको कुरान की कोई आयत समझ नहीं आती थी तो एक दुआ मांगा करते थे, ये उनका अपना अमल था, या मुअल्लिम अल इब्राहिम अल्लिमनी, ए इब्राहिम को इल्म देने वाले मुझे भी इल्म दे, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके ना हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, वारीना मना सिखाना, अल्लाह ने उनको सिखा दिया। फिर कहते थे या मुफहिम सुलेमाना फहिमनी, ए सुलेमान को फहम देने वाले यानी डीप अंडरस्टैंडिंग देने वाले मुझे भी फहम दे दे। गौर व फिक्र करें। आपको कुरान अगर अभी नहीं समझ आ रहा ना, तो अपनी डिस्ट्रेक्शंस कम करें। आप पता कि इमाम इब्ने तैमिया को जब कुरान पाक की कायद समझ नहीं आती थी ना, तो सुबह से दोपहर तक कई कई बार उसे एक आयत को पढ़ते थे। इमाम शाफी रहमहुल्ला के बारे में आता है कि एक मसले को जानने के लिए उन्होंने 300 बार कुरान पढ़ा। जब 300वीं बार पढ़ा ना, तो वो आयत समझ आ गई, और उनके लिए वो एक बहुत खुशी का मौका होता था कि समझ आती है। और ये जो रासिखीन है, ये कौन है? ये भी मैंने RKP वाले सेशन में रासिखीन की बहुत सारी मिसालें लिखाई थी। रसूख ये पैदा करें। एक इल्म का दर्जा आए, खाए पिया, पढ़ भी लिया, कुछ सुन लिया। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके अंदर इस्तेदाद ही नहीं है। मैं उनकी बात करती हूँ जिनका दिमाग बहुत चलता है माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ों में सिवाय कुरान पे फोकस नहीं थे। जो रासिख होने के लिए फोकस्ड होना पड़ता है, डीप अंडरस्टैंडिंग, इस तरह डूब जाएं। और हर वक्त का मुशाहिदा, कभी कायनात को पढ़ें, कभी कुरान को पढ़ें, कभी लोगों से सीखें, कभी हंसते हुए बच्चों को देखें, फिर आपको रसूख मिलेगा, बहुत गहराई में जाएंगे आप।